તારીખ 22/1/1994 શ્રી સમયસાર પરિશિષ્ટના કળશ નંબર 271 અને 272 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 34
अपना आत्मस्वरूप का ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा आचार्य देव गद्य में कहते हैं, फिर पद्य में कहेंगे। पहले थोड़ी गद्य की बात आई है। ज्ञानी शुद्ध नहीं का अवलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं मेरा शुद्धात्म स्वरूप तो द्रव्य से खंडित नहीं करता, क्षेत्र से भी खंडित नहीं करता, काल से भी खंडित नहीं करता हूँ और भाव से भी खंडित नहीं करता हूँ। मैं तो सो विशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव, मैं एक सो विशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ, ऐसा ज्ञानी नक्षत्र काल भाव के भेद को गौर करके विलीन करके अभेद रूप अपने को अनुभव करते हैं। जब ज्ञानी अपना अभेदात्म स्वरूप का अनुभव करते हैं तभी उनको भेद का सही परिज्ञान होता है। इसके पहले ग्रंथ से या श्रवण से, पठन से या श्रवण से भेद का ज्ञान किया हो, समझ की हो, जो समझ जो है वो पर्याप्त नहीं है। वेद की समझ भी तभी पर्याप्त होती है जब स्वरूप का अभेद अनुभव होता है, तब देखिए भेद और अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध है। भेद से अभेद विरुद्ध है, अभेद से भेद विरुद्ध है, फिर भी आत्मा भेदाभेद स्वरूप होने से एक सत्ता में दोनों का समावेश है। न भेद अभेदता का विरोध करता है, न अभेद भेदपना का विरोध करता है। चमत्कारिक वस्तु स्थिति ऐसी है कि भेद का कितना भी ज्ञान किया हो, समझ की हो, लेकिन अभेद अनुभव हुए बिना ये भेद का ज्ञान सही पर्याप्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभेद अनुभव के काल में ही भेद का सही ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, ऐसी कोई वस्तु स्थिति है इस मार्ग में। इसलिए ज्ञानी ऐसा अनुभव करते हैं कि द्रव्य क्षेत्र का भाव चारों प्रकार के भेद होने पर भी मैं अनुभव में द्रव्य से भी खंडित नहीं हुआ मालूम पड़ता हूँ, अनुभव में नहीं आता हूँ, क्षेत्र का भी मुझे भेद मालूम नहीं पड़ता है, काल का भी भेद मालूम नहीं पड़ता है, भाव का भी भेद मालूम नहीं पड़ता है। अभेद अनुभव में तो मैं एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ, ऐसा ही अनुभव में रहता है, वो भी निर्विकल्प। विकल्प पूर्वक इतना शब्द से बताते हैं, फिर भी ये निर्विकल्प बात है, सविकल्प बात नहीं है।
ऐसा लिया है, मैं सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र था, ऐसा
लिया। एक तो ने लिया विशेषण में वेद की बात लागी कि मैं एक स्वरूप हूँ, विशुद्ध स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र स्वरूप हूँ, ये सब की जोड़ी करके अच्छा वाक्य।
हाँ, पूरा एक वाक्य है और इसका वाच्य जो है वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प स्वरूप है, लेकिन कहने के जाएंगे तो विकल्प भी उठेगा और बिना विकल्प उठे बाणे भाषा
नहीं
निकल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो कहने में विकृति आती है, फिर भी ज्ञान में विकृति नहीं आनी चाहिए। कहने में वस्तु का स्वरूप विकृत हो जाता है, फिर भी ज्ञान में अविकृत रूप से जानना चाहिए, दूसरा इलाज है ही नहीं उसको। तो दूसरा इलाज नहीं होने से वाणी मौनपणा को प्राप्त कर लेती है, सादी अनंत काल तक शुद्ध अवस्था में। तो क्या बताए, कृपाणु देव कभी कभी पत्र में लिखते हैं ऐसा कि एक बात लिखने पर अनेक नए की संधि हमारे ज्ञान में लग जाती है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो अनेक नयात्मक है और हमारे ज्ञान में तो एक बात लिखने पर अनेक नए की संधि लग जाती है, और वो बात एक साथ तो लिखने में आवे नहीं, इसलिए हमारी वाणी सहज मौन पणा को प्राप्त हो जाती है, लिखने का बंद हो जाता है। और आचार्य महाराज भी इधर कहेंगे कि अलम अलम इति जल्पने न बहु विकल्पने न, बहुत विकल्प से बंद हो जाओ, क्या तक कहाँ तक हम बात कहेंगे, ऐसा करके वो भी ग्रंथ को समाप्त करेंगे। सुतने से देखने में आवे तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में अपना स्वरूप में, अपना स्वरूप कैसे कि शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहीं कुछ भी भेद देखने में नहीं आता, क्योंकि शुद्ध में निर्विकल्प अनुभव कराता है, इसलिए उसमें कोई भेद अनुभव में नहीं आता। इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में भेद करते
नहीं,
अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव में ज्ञानी भेद नहीं उठाते, भेद करते हैं। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञेय है और स्वयं ही ज्ञाता है, ऐसा अर्थ का कार्य कहने में आता है। ये दो सभी को देखकर
है,
ये जो ज्ञान मात्र भाव कहा उसको ज्ञान कहो, उसको स्वर्ण कहो, नहीं मैंने स्वर्ण पर मैं नहीं लेना इधर, उसको ज्ञान कहो, उसको ज्ञेय कहो, क्योंकि स्वयं ज्ञेय है इसलिए स्वर्ण कहो, या उसको ज्ञाता कहो, ऐसा अर्थ का काव्य कहते हैं कि योयम भावो ज्ञान मात्र अहमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र सनैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल बलगन, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातुमद वस्तु मात्र। श्लोकार्थ, यो अयम ज्ञान मात्र भाव अहम अस्मि, सज्ञेय ज्ञान मात्र न ज्ञेय, जो आ ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, सो ज्ञेयो का ज्ञान मात्र है जानना है। क्या ये ज्ञान मात्र भाव, तो ज्ञान तो ज्ञेय परक नाम है, ज्ञान नाम ज्ञेय परक है, लेकिन यहाँ पर हमको यही कहने का हेतु ही नहीं है कि जो ज्ञेयो का जानता है उसको हम ज्ञान कहें, ये बात हमको इंतर नहीं करनी है। इधर अध्यात्म का प्रकरण चलता है, तो ज्ञान कहते ही ज्ञेय को जानने वाला ऐसा विचार मत करना, ऐसा करता है। ज्ञान कहते ही जो मेरे को जानता है वो ज्ञान, ये बात इधर है ही नहीं। वो बात हम इधर कहने का हमारा हेतु भी नहीं है, हमारा आशय भी नहीं है। जो लोग ज्ञान मात्र भाव में हूं, वो मेयो का ज्ञान मात्र नहीं जानना, उसको मेयो का ज्ञान ऐसा नहीं जानना, उसको तो ज्ञान का ज्ञान जानना, ज्ञान भी ज्ञान का जानना, ने भी ज्ञान का जानना और ज्ञाता भी ज्ञान ही जानना। वो दूसरे पदार्थ की बात ही इधर नहीं है, तो प्रकरण ही इधर नहीं चलता है। शास्त्र में तो आता है, आगम में आता है, वो आगम विविक्षा का कथन में आता है। यहाँ पर अध्यात्म की विविक्षा चलती है, आगम की विविक्षा नहीं चलती है। तो अध्यात्म की विविक्षा जहाँ चलती हो, वहाँ आगम की विविक्षा वाला विषय बीच में डालने से कैसे अध्यात्म भाव का आविर्भाव करना, अध्यात्म भाव को कैसे प्राप्त करना, वो बात छूट जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इधर ही नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। जैसे कि हमारा स्वभाव का प्रदेश भिन्न है, हमारा त्रिकालीय स्वभाव का प्रदेश भिन्न है, और एक समय की शुद्ध पर्याय का प्रदेश भी भिन्न है। फिर तो अशुद्ध पर्याय का प्रदेश तो भिन्न है, ये कहने की जरूरत भी
नहीं है। सरता भी कठिन,
बस यही कह रहे हैं। तो भिन्न माने क्या, भिन्न माने यहाँ अध्यात्म की विविक्षा चलती है, आगम की विविक्षा नहीं चलती है। आगम के हिसाब से जो द्रव्य का क्षेत्र है, प्रदेश है, वही गुण का है, वही पर्याय का है, ये वस्तु व्यवस्था है। फिर यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा कहने का मतलब क्या है कि पर्याय की अहम बुद्धि छोड़कर, पर्याय का आलंबन छुड़ा करके, स्वभाव का आलंबन लेने के लिए जिसका आलंबन छुड़ाना है उसका निषेध किए बिना आलंबन आ सकता
नहीं है। बहुत अच्छी बात।
और ये कहेंगे कि आगम का सिद्धांत टूट जाएगा। कहते हैं कि भैया आगम का सिद्धांत तोड़ने का यहाँ अभिप्राय नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन कथन तो ऐसा ही आ सकाएगा। दूसरे प्रकार से ये बात अच्छी तरह समझाई नहीं जाती है, इसलिए ऐसा कहना जरूरी है। इसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी ने गला दबा दिया, गुलाल खून करता है तो गला दबा देता है। अब हमको मरना नहीं है, हमको जिंदा रहना है। वो भले ही मारना चाहते हैं लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको छुड़ाना पड़ेगा। अब वो तो बहुत ताकत से गला दबा रहा है, तो हमको छुड़ाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? कि लगानी पड़ेगी। अगर हम ताकत हमारी लगाएंगे और उसको छुड़ाने के लिए धक्का लगाएंगे, धक्का देंगे तब तो छूटेगा, नजदीक नहीं रहेगा तब तो। अब धक्का देने से उसको उसको लग जाएगा तो धक्का देने से उसको लग जाएगा तो ऐसा कोई विचार करेगा? हालांकि हम उसको लग जाने का हमारा अभिप्राय
नहीं
है, नुकसान हो गए, उसको लग जाए, उसका पैर टूट जाए, उसका माथा टूट जाए, वो हम चाहते नहीं है। लेकिन जो हमारा गला छुड़ाना है तो हम निर्दय होकर के कैसे
निर्दय
होकर के थका लगाएंगे जब
तभी तो छूटेगा।
ये नागशूल है गला हमारा
छूटेगा।
ऐसा पर्याय बुद्धि में हमारा गला इतना दुब रहा है कि हमारा दम घट रहा है। तो हमको इतना जोर से धक्का लगाना पड़ेगा पर्याय बुद्धि को, इतना जोर से पर्याय बुद्धि को धक्का लगाना पड़ेगा कि एक दफे तो नहीं समझने वाले को ऐसा लगेगा कि आगम का सिद्धांत तोड़ दिया, लेकिन ऐसा समझने वाला ना समझे तो हमारा अभिप्राय को नहीं समझता है। हम कभी आगम का सिद्धांत तोड़ने वाले
नहीं है।
आगम का सिद्धांत हमारे ज्ञान में है, फिर भी पर्याय बुद्धि से इतना जोर किए बिना पर्याय बुद्धि छूटती नहीं है, टूटती नहीं है, ऐसी वस्तु स्थिति है। इसलिए हमको पर्याय का प्रदेश को भी भिन्न कहना पड़ता है, वो सही है और ऐसे ही हमारा स्वरूप में हम आ सकते हैं, ऐसे ही स्वरूप स्वभाव का अवलंबन आ सकता है और पर्याय का अवलंबन छूट सकता है। तो अध्यात्म में आगम की बात बीच में नहीं लानी है। ऐसे ज्ञान मे को जानता है वो बात पर मे को जानने वाली बात अध्यात्म में नहीं लाने। क्योंकि इसकी इधर जरूरत नहीं है। जब हमको हमारे स्वरूप में लीन होकर स्वानुभव करना है तब हमारे पढ़ने का कौन सा प्रयोजन है, हमको क्या प्रयोजन है, परिदृश्य क्या लेना देना है, कुछ लाभ लेना है, न राग करना है न द्वेष करना है। इसलिए कहते हैं कि हमारा ज्ञान ही ज्ञान है, हमारा ज्ञान ही देह है और हमने ज्ञाता है, पर ऐसा तीन भेद भी हमारे में नहीं है। जब हमारे हमारे भेद को ही हम गौण कर देते हैं, उसमें भी आगम का सिद्धांत का विचार नहीं करना है, तो फिर परग्ने में आगम का सिद्धांत का कौन सा विचार हम करेंगे, कि विचार ही नहीं करना है। राजमुल जी ने इस कलश की टीका करते हुए ये बात कही कि आत्मा ज्ञाता है और छह ग्रह देह है, ऐसी भ्रांति अनादि से चली आई है इसमें है ना, ऐसी भ्रांति अनादि से चली आई है। क्यों कि आगम का पढ़ने वाला फिर पर्ग्ने को छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो पर्ग्ने से ना छूटेगा नहीं तो स्वर्ग्ने में लीन होगा कैसे, स्वस्वरूप में लीन नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को तुम छोड़ दो, जैसे भ्रांति को छोड़ते हो वैसे ही एक दफे तो उसको गौण कर दो। ये बात आगम के आगम में रहने दो, अब तो अध्यात्म का प्रकरण चलता है और अध्यात्म में हमको स्वरूप अवलंबन लेना है, ये स्वरूप का आधार लेना, इसी का नाम अध्यात्म है। अधिवत्ता आत्मा, आधार लेना, आत्मा का आधार लेना, इसी का नाम अध्यात्म है।
अधि प्लस
आत्मा अध्यात्म संदेश है, अधि आत्मा अध्यात्म ऐसा। जहाँ आत्मा का आधार लेने की बात है वहां पर का आधार छुड़ाने की बात आएगी। ये मेरा अग्नि है, वो मेरा अग्नि है, वो मेरा अग्नि है, ऐसा कर करके कर तो अनाधिकाल तेरा चला, और शास्त्र पढ़ करके भी तो तुम्हें यही करना है क्या, यही तो फिर स्वरूप में कब आओगे, तो स्वरूप का अवलंबन कैसे होगा, ये तो तुमको इस दफे बंद कर देना पड़ेगी, वो बात समझ करके छोड़नी है, बंद करनी है। वो सीढ़ी पर से पैर उठा लो तुम, वो सीढ़ी पर जो पैर रखा है वो ऊपर आने का है, तो उसको छोड़ दो, ऐसी बात। ऐसा ही चला है ये वेदांत भी अभेद कहता है बहुत, लेकिन वेद को सर्वथा नहीं मानता है। तो वहां भूल हो जाती है, यहाँ तो जान करके उसको गौण कर
देंगे।
वैसे भगवान के बारे में आया कि तुम इतना भिन्न हो सारे जगत से इतना तुम भिन्न हो कि इस जगत के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। मतलब कि ये तेरे लिए तो सारा जगत शून्य है, क्या? क्योंकि तेरे आत्मा में नहीं है। जगत का अस्तित्व जगत में भले ही होगा लेकिन तेरे आत्मा के लिए तो वो शून्य है, क्योंकि आत्मा में उसकी शून्यता है। तो भगवान की वाणी में सूत्र आया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो एक न्याय से बात तो सही है लेकिन सारा जगत को ये शून्य कर दे गए तो वह तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर
वही जगत को जानने वाला जो साधन है उसको ही नहीं मानते।
तो क्या है कि जगत मिथ्या है तो फिर जगत शब्द कैसे आया?
जगत शब्द कैसे आया? मिथ्या शब्द तो क्या से निकला?
तो ऐसी बात नहीं है लेकिन तेरे भिन्न पड़ने के लिए जगत मिथ्या है, वो बात सही है। तो एक न्याय से सही भी है, आत्मा में आने के लिए सही भी है, पर सर्वथा उसको मान लो तो गड़बड़ बड़ी हो जाए,
एकांत हो जाए,
तो एकांत हो जाए। इस तरह से यहाँ भी मैं यह ज्ञान मात्र भाव हूँ, यह नियो का ज्ञान मात्र ही न जानी जानना, ये विवक्षा। यहाँ गेयो का ज्ञान की बात पर नियो का ज्ञान की बात नहीं लेना है। परंतु नियो के आकार से होने वाला ज्ञान के कल्लोल रूप से परिणमता है, क्या अर्थ किया है इसका? नियो के आकार से होने वाला ज्ञान का कल्लोल रूप से परिणमता है वो, उसका क्या अर्थ किया है? ये एक आकार ले लिया लेकिन वो ज्ञान का कल्लोल है। अपने जीव से भिन्न छह द्रव्यों के समूह का जान पाना मात्र भावार्थ इस प्रकार है कि मैं एक नायक, समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञान मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है? जान पड़ा रूप शक्ति, जानने योग्य शक्ति और अनेक शक्ति विराजमान वस्तु मात्र, ऐसे तीन भेद मेरा स्वरूप मात्र है, ऐसा नहीं रूप हूँ। महाभारत इस प्रकार है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता। क्या लिया?
वेद्य वेदक,
वेद्य वेदक भाव ले लिया।
मैं
ये आशय है, राजमल जी ने यह आशय को खोला है टीका में कि यहाँ जानना नहीं जानने का सवाल नहीं है, यहाँ अनुभव करने का सवाल है। और अनुभव है सो वेदन रूप है, वेदन में जानना आ जाता है, जैसा वेदन है ऐसा ज्ञान जानने रूप हो जाता है कि मेरा वेदन ऐसा है ज्ञान रूप। इसलिए मेरा नाम ज्ञान है, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय है और इसलिए मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा लिया है। क्योंकि वेद्य वेदक भाव रूप मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से अनुभव करता हूँ, जानता हूँ, इसलिए मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय और मैं ही ज्ञान।
इसमें मैंने पढ़ा एक और कुछ और मैं व्यापक वेद्य वेदक दो टुकड़ा हो गया, इसलिए उसको वेद्य वेदक को पर्याय कर दिया है। अभी लोग पद्धतिक बातें नहीं है उसमें, तो कथन चित्र बेदा बेद है, ये बात पद्धतिक बात नहीं
कहने में अनुभव में नहीं,
अनुभव में तब वो तो दर्द हो जाती है उस टाइम में, अनुभव में खुदी दर्द हो जाती है समय के लिए, अलग नहीं है।
कहने में तो क्या क्या उपाय है, कोई दूसरा कोई कहने का कोई प्रकार हो सकता है? कहने में कोई दूसरी भाषा से कोई बात कर सकता है?
वो जो चलती है वेदे वेदे गौर चलता है, सत्तारा वे चलता है, तो ऐसा भले वो अपने को अपना ना माने लेकिन बात तो वही रहती है।
कोई
वो तारा भाई उसको आत्मा में पकड़ के बैठी है,
तो उसमें दो है या एक है? तो तारा भाई
एक से कह देखे लेकिन दो होते हुए एक है, दो होते हुए एक है।
दो होते हुए एक है, अनुभव में दो है कि एक है?
अनुभव में एक
है,
अनुभव
है बस। यहाँ अनुभव का काम, यहाँ जानने का काम नहीं है, यहाँ अनुभव का काम है। अनुभव में तो एक ही रहता है, एक ही होता है, वहाँ द्वैतम न प्रतिभाषी, न प्रतिभाषी, द्वैत आता ही नहीं ज्ञान में, अनुभव में द्वैत आता ही नहीं
है, तो
अनुभव होगा नहीं, विकल्प हो जाएगा। आचार्य महाराज श्री गुरु हमको ले जाना चाहते है, क्यों उपदेश करते हैं आचार्य महाराज ने उपदेश क्यों किया है, तो हमको निर्विकल्प अनुभव में ले जाने के लिए उपदेश किया है। ये आशय है, कुछ कथन का कोई आशय तो होता है, केंद्र स्थान तो होता है कि नहीं होता है।
ये जो कुछ कहा वो इसके लिए किया, क्यों कहा, अभी जो जितनी बात कही है सब इसके लिए कही, जो बात कही सब इसके लिए हम कहते हैं।
हाँ, इसके लिए कहते हैं। विकल्प में तो अनादि से रुका हुआ है, अब शास्त्र का उपदेश करके क्या हमको उनको विकल्प में रखना है कि नहीं रखना है, विकल्प तो छुड़ाना है, तो इस तरह से छुटेगा, दूसरा कोई उपाय
नहीं।
ऐसा विकल्प में भेद पड़ता है, वचन में भेद पड़ता है, लेकिन वस्तु में तो तीन भेद है ही नहीं
है।
जो वस्तु ज्ञाता है वही वस्तु ज्ञेय है, वही ज्ञान मत, तो वहां तो तीन है नहीं। हम उसको तीन भेद से देखते हैं, वो देखने का दृष्टिकोण है, उसमें विकल्प होता है। तीन भेद से देखने का जो दृष्टिकोण है उसमें तो विकल्प उत्पन्न होता है, तो हमारा आशय टूटता है, वहाँ हमारा प्रयोजन टूटता है, इसलिए हम इसका यहाँ निषेध करते हैं। हमारा प्रयोजन साध्य करने के लिए हम इसका यहाँ निषेध करेंगे, तो इसमें क्या आपत्ति है,
कोई
तो उसमें कोई विरोध है नहीं, और विरोध भाषित भी होना चाहिए
नहीं।
फिर से जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूं, वह नियो का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना, क्योंकि वो तो इधर प्रकरण ही नहीं है। बोले नेह तरफ नाम है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रकरण
नहीं
है ही नहीं, तो मूल में है कि यो ओयम भावो ज्ञान मात्र अहम अस्मि, नेयो ने ज्ञान मात्र स न एव, यहाँ वो बात नहीं है, ने का ज्ञान कराने की बात यहाँ
नहीं
है, तो फिर क्या है कि गेयो के आकार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये ज्ञान कल्लोल गलगल, वो तो ज्ञान का ही कल्लोल है, उसको तुम ने के मुख्यता से क्यों देखते हो, ज्ञान की मुख्यता से देखो, पानी के कितने भी तरंगे लेकिन पानी ही पानी देखो, ऐसा कहने का अभिप्राय है। तरंग अनेक है, पानी अनेक है क्या,
नहीं एक ही है,
पानी तो एक ही है, सभी तरंग में पानी एक ही है। गेहूं के आकार से होने वाला ज्ञान का कुल्लोल रूप से परिणत हुआ हो, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता मय, तीनों मय ले लिया है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता मय वस्तु मात्र, एक अभेद वस्तु मात्र, जानना अनुभव करना, वेद्य वेदक भाव से अनुभव करना, वस्तु मात्र ज्ञेय हो ऐसा जानना, ऐसा करके लिया है, अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, ऐसा ज्ञान के ज्ञाता रूप तीन भावों से वस्तु मात्र जानता। कर्म जी ने बहुत सुंदर बात लिया है कि ये तो वेद वेद भाव की बात चली है, वेदन में जानना आ जाता है, इसलिए जानना शब्द लिया है। बात तो मूल में अनुभव की है। भावार्थ कहते हैं ज्ञान मात्र भाव जानन क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मात्र भाव में जानने की क्रिया होने से उसको ज्ञान स्वरूप ऐसा कहने में आता है, क्योंकि वो जानता है। तथा यह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप भी है, ज्ञान रूप ही है और स्वयं ज्ञेय रूप भी है। बाह्य ज्ञेयों से बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है, जो बाहर के ज्ञेय है अन्य पदार्थ वो तो ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान में वो प्रवेश नहीं कर सकते, वो ये तो बाहर के बाहर ही रहेंगे, ज्ञान में इसका प्रवेश नहीं। नेयों के आकार से नेयों के आकार की ही ज्ञान द्वारा देखने में आता है। ये ज्ञान कलोल ही स्वयं ही अपने से जानने में आता है। वो किसका होता है? पर का तो अनुभव हो नहीं सकेगा, पर ने का तो अनुभव नहीं हो सकेगा, उसकी आकृति आई, लेकिन ज्ञान में अनुभव किसका होगा? स्वयं का अनुभव होगा, दूसरे का तो अनुभव हो सकता। इसलिए ये ज्ञान कुंडल ही ज्ञान द्वारा अनुभव में आते हैं, जानने में आते हैं।
इसी हिसाब से एक सिद्धांत निकला जब बात लिखने में नहीं आता। ये जो अभी बात चल रही है ज्ञान कुंडल, जब पद का प्रतिभास हो रहा है उस वक्त की असल में तो ज्ञान का ही कुंडल है। तो ज्ञान के कलों के सामने अगर दृष्टि कैमरे की तो पर मेरे को दिखाई नहीं देता।
ठीक है, जब हमारे में देखते हैं तो हमारे में हमारा अस्तित्व है, दूसरे का है ही नहीं।
बराबर,
तो हम हमारे अस्तित्व को ग्रहण करते हैं तो दूसरे का अस्तित्व कैसे ग्रहण होगा? वो तो है ही नहीं।
बराबर,
वो तो है ही नहीं। तो हमारा उद्देश्य स्व को ग्रहण करने का है या पर को ग्रहण करने का? पर को तो अनादि से ग्रहण करके हैरान हो गया, दुखी हो गया। और स्वयं को ग्रहण करने के लिए पर ग्रहण का त्याग करना आवश्यक है।
बहुत अच्छी
बात है। जब मैं मेरे में अपने आप को देखता हूँ तो मेरे में दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो मुझे दूसरा कहाँ से दिखाई देगा? तो मेरे में मैं मुझको ही देखता हूँ, दूसरे को देखता
नहीं।
बात खत्म। तो ये मेरा प्रयोजन तो बात मेरा प्रयोजन तो पूरा हो जाता है इससे। ऐसी बात ज्ञान कुल्लूल ही ज्ञान द्वारा जानने में आता है या अनुभव में आता है। इस प्रकार से स्वयं ही स्वयं से जनाने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। स्वयं ही जनाने योग्य होने से स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं जानने वाला भी है, स्वयं जनाने वाला भी है। और स्वयं ही अपने जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। ज्ञान भी स्वयं, ज्ञेय भी स्वयं, ज्ञाता भी स्वयं ही है। और दूसरे का हमें कोई प्रयोजन है नहीं। इस प्रकार से
हम अपनातन में द्रव्य लघु
टीका
अपनाता
જ્ઞાતા ગ્રહ છે, જ્ઞાને પુત્ર છે, ત્રણ ભેદ લેવા જ નથી. જ્ઞાતા પણ પોતે, જ્ઞાન પણ પોતે, અને જ્ઞેય પણ પોતે જ છે, એમ કેવું છે. સમજાને કે લીએ હૈ, ક્યોંકિ સીધા અભેદ સે કોઈ સમજાયા નહીં જાતા ઓર કોઈ સમજ ભી નહીં સકતા. ઉસી વક્ત કહેતે હૈ શ્રી ગુરુ કે હમારા અભિપ્રાય ભેદ કો સમજાને કા નહીં હૈ. હમ તુમકો ભેદ સે સમજાતે હૈ, ફિર ભી હમારા હેતુ, હમારા દ્રષ્ટિકોણ ભેદ કો સમજાને કા હૈ નહીં.
બરાબર,
હમારા દ્રષ્ટિકોણ ઓર હમારા હેતુ તો અભેદ કો હી સમજાને કા હૈ. તો તુમ અચ્છી તરહ અભેદ કો સમજોગે તો તુમ્હે અભેદ અનુભવ હો જાયેગા. અગર તુમ ભેદ મે રુકોગે ઓર અભેદ કો નહીં સમજોગે, ભેદ જ્ઞાન મે ગૌણ નહીં હોગા તો અભેદ અનુભવ ભી હોગા
નહીં.
એ સાફ બાત હૈ.
ફિઝિક્સ માં અને મેટાફિઝિક્સ માં એમ કહે છે કે સમ ઓફ પાર્ટ્સ ઇઝ નોટ ધ હોલ.
ઠીક હૈ, ઠીક હૈ. અચ્છા વો ભી હૈ, નહીં ચક્ર માં ક્યાં કહા,
ઇસકા ગુજરાત ક્યાં હુઆ, તમે ઇઝ પાર્ટ.
हाँ, कोई भी अवयव है वो कोई आखिर पूरी चीज नहीं है.
असम्भी असम्भी बोल जाती है. सम ऑफ पार्ट्स, द पार्ट्स नो के सर्वार्थ छे. ये
अखिल वस्तु में छे. सब मीन सर्वा
कर रहे हैं. ये जो पार्ट छे ये आखिर वस्तु नहीं, ये भेद छे ये आखिर वस्तु नहीं, ये भेद ये भेद आखिर वस्तु छे.
पार्ट्स में सर्वा ये वास्तु क्यों छे. हां जी, कभी एक ने एक बे थिया.
हां जी,
तो बेनो सर्वा हो. એ મિત્ર વસ્તુમાં નથી, એમ કે છે. વિજ્ઞાનમાં ફિઝિક્સમાં એમ નથી, સાયન્સમાં એમ નથી. શું કે ભાઈ દ્રવ્ય છે એમાં ગુણ આવીને મળે, એમાં પર્યાય આવીને મળે, એટલે આખું દ્રવ્ય થયું એમ નહીં. શું એક દ્રવ્યમાં ત્રણ ભેદ થી સમજાવાય છે, દ્રવ્ય રૂપે, ગુણ રૂપે અને પર્યાય રૂપે. એક જ પદાર્થ નથી, ત્રણે નો સવાલ કે એક વસ્તુ નથી, એમ કે. આ તો શું છે કે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ જોઈએ આમાં, ગણિત નો દ્રષ્ટિકોણ નો કામ આવે. ગણિત છે ને એમાં ભૂલ ગુલામણી કરે છે. આપણે બે એકડા લઈએ તો વન પ્લસ વન ઇક્વલ ટુ ટુ, દોનો વન હૈ, એક એક અંક હૈ. પર વન માઇનસ વન ઇક્વલ ટુ ઝીરો, દો માં સે ઝીરો હો ગયા. પર વન મલ્ટીપ્લાઈડ બાય વન ઇક્વલ ટુ વન, એક મેં એક પ્લસ કરો તો દો હોતા હૈ, લેકિન મલ્ટીપ્લાય કરો તો દો હી નહીં હોગા, એક હી રહેગા. પર વન ડિવાઈડેડ બાય વન ઇક્વલ ટુ વન, તો વન મેં કો વન કો ભાજી કરો તો ભી એક હી રહેગા. તો ઉસમે ક્યા હૈ કે દોનો એક હી અંક હોને ભી રિઝલ્ટ ઉસકે તીન હૈ, દો ભી હૈ, શૂન્ય ભી હૈ, ઓર એક ભી હૈ. બાત તો દોનો એક એક અંક કી હૈ, ફિર ભી તીન રિઝલ્ટ મિલતા હૈ. તો ગણિત મેં યે ગડબડ હોતી હૈ, સાયન્સ મેં એસી ગડબડ નહીં હોતી હૈ. સાયન્સ તો એક વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ.
ઉપનિષદ નો શ્લોક પણ એ જ છે ને કે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ કાઢો તો
પૂર્ણ જરીય પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમ આદાય પૂર્ણમેવ શિષ્યતે.
ભગવાન
જિનેન્દ્ર પરમાત્મા ને દિવ્ય ધ્વનિ માં એ સબ આ ચુકા હૈને કોઈ અચ્છા લગા તો લે લિયા और अपना संप्रदाय निकाला. कोई एक बात को, दो बात को, पांच बात को पकड़ करके, किसी ने कोई दूसरे एक दो बात को पकड़ कर दूसरा अपना संप्रदाय निकाला, तीसरे ने ऐसा 363 संप्रदाय ऋषभदेव भगवान की वाणी सुन करके चालू हो गया भरत क्षेत्र में. एक थोड़ा थोड़ी सागर पहले की बात है, तो यहाँ से चालू हुआ है. तो बात तो थोड़ी
हमने ढंग से बात की ढंग से समझनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा अनुभव हुए बिना संसार का जन्म मरण का अभाव नहीं होता और जीव परिभ्रमण करके संसार में दुखी ही दुखी हो रहा है, तो निष्कारण करुणा से श्री गुरु ने ये बात समझाई है कि तेरा परिभ्रमण तो आत्मज्ञान के बिना आत्मानुभव के बिना खत्म होने वाला नहीं है। एकमात्र जन्म मरण नो नाश आत्मज्ञान सिवाय थतो नथी। तो कौन देशो प्रसिद्ध रचना है आत्मज्ञान सिवाय जन्म मरण नो नाश। तो वो आत्मज्ञान आत्मानुभव में होता है क्योंकि वो वेद्य वेदक रूप अनुभव ज्ञान है। जानने वाला तो जान लेता है कि आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए कहा कि लक्षण से गुण से और वेदन से, लक्षण से गुण से और वेदन से जिसने आत्मा जाना उसी को ही आत्मज्ञान हुआ है, दूसरे को आत्मज्ञान नहीं हुआ है। सब बातें बात है
डांस
करता है आत्मा, आत्मा के पास डांस करता है क्या कल्लोल उठता है, नृत्य करता है। पर्याय अपनी जो पर्याय है वो आत्मा रूप होकर आत्मा के पास नृत्य करती है। શું કર્યું જબ જીતા થકી, શું કર્યું તબ તપા થકી, શું કર્યું ગંગા નાયા થકી, શું કર્યું માળા ફેરવા થકી, જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિહ્નો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી। સ્પષ્ટીકરણ ક્યાં થાય जन्म होता है जैन कुल में, वो पैदा नहीं हुए फिर भी उसकी कुछ बातें स्वतंत्र रूप से अपने आत्मा में से ऐसी निकलती है कि जैन सिद्धांत और उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जो जैन कुल में जन्म हुआ उसको तो उस बात का पता ही नहीं है, और जो जैन कुल में जन्म नहीं लिया उसको इस बात का क्या पता हुआ?
ये बात आई
कहाँ से आई? कि इसकी आत्मा में से आई है, इनके संप्रदाय में तो वो चीज है नहीं। तो इसकी आत्मा में से जो आई
वो जैन की तो है,
तो ये जैन मार्ग को अनुसरण करने वाला है, आगे जा करके जैन मार्ग को प्राप्त होकर के ये मुक्त हो जाएगा।
कुछ बातें
हाँ,
ये ना ये भी तय नहीं कि ट्रुथ हैज नो लेबल्स,
ट्रुथ हैज नो लेबल्स,
नो लेबल्स,
नो लेबल्स, ट्रुथ है गुणवाचक है,
व्हाट इज लेबल इज नो ट्रुथ।
ठीक है, सत्य को कोई लेवल नहीं लगता,
सत्य नहीं,
इसलिए संप्रदाय बुद्धि है वो सत्य को लागू संप्रदाय बुद्धि से बाहर निकल जाओ। मैं गच्छ में नहीं, मैं मत में नहीं, मैं बाला में नहीं, मैं आत्मा में, ये बात है। इसलिए ज्ञानी भी दूसरे मत वाले का पद क्यों दोहराते हैं? नरसिंह मेहता का पद दोहराते थे गुरुदेव और कृपा देव, ये दोहराते हैं इसका अखा भगत का, करता मटे तो टूटे कर्म, करता मटी जाए ना, करता था तो एने ये निष्कर्म दशा ने पाने, ये छे महाभजन एटले साधक अवस्था नो मर्म ही छे।
माँ भजेंगे तो स्वरूप परिणम, उसका मत तो उतना ही है। और तू छो जीव में तू नाथ छो तुम लोग परमेश्वर तू छो तू
परमात्मा
से मैंने सब बात पूरी कह दी है। तीन चरण में मेरी बात पूरी हो जाती है। समय सार पूरा आ गया, कर्ता कर्म अधिकार कहाँ से आया, भगत के पास समय सार कहाँ से आया। कृपा लोग कहते हैं वो मार्गानुसारी है
अपना मुझे भी धर्म सही बोलते अपना
અખે ઝટકા હાથ, મારે હવે કઈ કેવું નથી, મેં જે કેવું તું બધું પૂરું કરી દીધું। આટલામાં ત્રણ ચરણ માં એને પત્તાકર્મ અધિકાર લઈ લીધો હતો। ક્યાંથી આવ્યો? સંપ્રદાયમાં તો છે નહીં એવી વાત, એ આત્મામાંથી આવ્યો છે। આત્મા કોઈ એવો છે સત્ય માર્ગમાં આવી જશે, સત્યને પામી જશે અને એનું ભવગમાં બટી જશે એમ જ્ઞાનીઓ ઊંડાણથી જોવે છે એ આત્માની યોગ્યતા। એટલે એને જ્ઞાનીઓ સ્થાન આપે છે, પોતાના માણીમાં પણ એનું સ્થાન આપે છે, એટલું બહુમાન કરે છે।
કવિદાસજી તો
માનવા કવિ કો મોજા ભગત કો નરસિંહ મહેતા કો નિરાત કોળી કોઈ થાય તો કોઈ મેં મોર શેડ્યુલ કાસ્ટ હતી પોતાએ કઈ નહીં હોતા આત્મા વો સબ કાસ્ટ બાસ્ટ જો હૈ વો કોઈ આત્મા કો લાગુ પડતા
નહીં।
हमको गुंडे ने ऐसा ही कहा था, बोले था ना उसको, मैं फर्स्ट टाइम गया तो गुंडे ने बोला प्रवचन हो गया 15-20 मिनट पार्क पर बैठते थे उन दिनों में, कुछ 10-20 आदमी में बैठते थे, बहने चले जाते थे, अलाउड नहीं था। ये कौन आया है, कोई नया आदमी लगता है। तो मैं जिसके साथ गया वो बोला मुख से था मेरे साथ आए, महानगर से आए, विष्णु है लेकिन जैन तत्व में अच्छा रस है उनका, अच्छा विष्णु है, या तो कोई विष्णु भी नहीं या तो कोई जैन भी नहीं, या तो सब आत्मा ही आत्मा है। गुरुदेव ऐसा बोले थे, हमारा लक्ष्य करके गुरुदेव ने पहली बार वो निकाले थे, या कोई जैन नहीं वैष्णव नहीं, या तो सब हमारे पास तो सब आत्मा ही आत्मा है, तो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, जैन वैष्णव की दृष्टि से नहीं देखते हैं। पहले वचन हमने ये सुना गुरुदेव के से, तो उनको बोलने की आखिर ठीक बात है, यहाँ तो ओपन फील्ड है, नहीं कोई संप्रदाय वाला प्रतिबंध
नहीं
है, सब वचन रत्न कर दिया प्रवचन रत्न कर જગે બોલે આખરી વચના મળતો जैन कोई संप्रदाय नहीं है, गुरुदेव के वचना जैन कोई संप्रदाय
नहीं है,
ही नहीं। गुण स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य घन अनंत गुणों का घन ज्ञान आनंद आदि गुण स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा, उसको जो पर्याय में उपाधि करके अनुभव कर लेता है वो राग से और अज्ञान, राग और अज्ञान को जीत लेता है, उसलिए उसको जैन कहने में आया है। जैन गुणवाचक है, संप्रदाय वाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, रूढ़िवाचक नहीं है। जो राग और अज्ञान को जीतता है वो जैन है। कैसे जीतता है? शुद्ध चैतन्य ज्ञान गुण स्वरूप आत्मा है, उसका गुण प्रकट करके जीतता है अवगुण को, बस उसको हम जैन कहते हैं। क्योंकि संप्रदाय संप्रदाय
એમ
जैन को जाति बना दिया है।
हाँ जी,
क्या
जाति?
जैन को जाति बना दिया है।
जैन जाति
हमें, जैन जाति है, जैन जाति नहीं है।
ये तो निर्गत शब्द पर
माया व्यंतर ग्रंथि, वो ग्रंथि जिसको नहीं है बाह्य पदार्थ और अंतरंग में रागा दिभाव, वो
इंद्रग्रंथ ग्रंथि नहीं।
हाँ, अंतर ग्रंथि
आत्मस्थिति जी मां जैन निवाद आवे ने ते श्रीमती प्रकाश करे छे गच्छ मत नी जे पर बना ते नहीं सद व्यवहार बान नहीं निजे रूप ते निश्चय नहीं था जो की बात है।
वो बचपन की कल्पना है, तो वस्तु का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान मात्र भाव ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञाता है, ये तीनों भाव युक्त युक्त मैंने सर्वाला नहीं, तीनों भाव स्वरूप सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। सामान्य विशेष मैंने द्रव और पर्याय रूप वस्तु है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूँ, ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूँ, ऐसे अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव, ऐसा अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव में अनुभव करता है, ये बात अनुभव की है, वेदन की है। इस तरह से अनुभव करना चाहिए, उसमें कोई भंग भेद है उसकी भी मुख्यता नहीं, और फर्क की तो बिल्कुल बात ही इधर प्रकरण ही
बिल्कुल।
आगे कृपल इसमें ऐसा कहते हैं कि मेरा तत्व अनेकाकार अशुद्ध भी दिखता है, ज्ञान में अनेकाकार और पर्याय में रागव भी मलिकता, कभी मेरा मेरा तत्व दोनों रूप वेचक एक और रूप और अनेक रूप दोनों दिखता है, और कभी अमेचक एकाकार शुद्ध भी दिखता है, तो भी परस्पर सुसंहत सुग्रथित प्रगट शक्तियों के समूह रूप से विराजमान है ऐसा आत्म तत्व निर्मल बुद्धि वालों को मन का विमोहित नहीं करता, यानी निर्मल बुद्धि वाले को उसमें कहीं प्रकार की उलझन नहीं होती, अकुलाहट नहीं होती कि एक कैसा है, शुद्धि भी है आत्मा में, अशुद्धता का पर्याय भी दिखने में आता है, शुद्ध पर्याय भी दिखता रहता है, स्वभाव भी दिखने में आता है, एक पड़ा भी दिखने में आता है, अनेक पड़ा भी दिखने, ये क्या है? निर्मल बुद्धि वाले को उसमें कोई तकलीफ पड़ती
नहीं,
उसको सर्वांग समाधान रहता है। अनुभव में आने वाला जो परम तत्व है, जिस परम तत्व का अनुभव होता है, वो परम तत्व सर्वांग समाधान स्वरूप है। कैसा है? स्वयं ही सर्वांग समाधान स्वरूप है, इसलिए जिसको स्वानुभव होता है उसको कहीं असमाधान नहीं होता है। रोकर्म के उदय से चित्र विचित्र पाने हो गए, अपने भी परिणाम शुद्ध अशुद्ध भी होंगे, कुछ शुद्ध भी होंगे कुछ अशुद्ध भी होंगे, साधक अवस्था है, वितरागता भी होगी और बाह्य अंश में थोड़े राग द्वेष और चारित्र मोह भी होगा। राग द्वेष और चारित्र मोह के परिणाम होने पर भी असमाधान कहीं नहीं होता है यार, क्यों? कि जो स्वरूप है जिसका अवलंबन वर्तता है कि मैं ऐसा हूं, वो राग द्वेष मोह आदि अंश का निषेध कर देता है। ये होता है, करने लायक
नहीं,
स्वयं होता है। करने लायक नहीं हूँ और मेरा स्वरूप मिट करके, मेरा स्वरूप बदल करके मैं रामकृष्ण मुक्ति बताने, मैं उस रूप होता नहीं। तो वो स्वयं जो है वो अपने आप स्वरूप बना रहता है और उनको परने की तरह जान देता है रामकृष्ण और के अंश को, उसको कहीं भी उलझन होती नहीं।
Thank you.